शरधामाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यमुना जमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा
जय ओम विष्णुपाद। साक्षात परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोपनिषद श्री श्रीमद्भयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Om Ajnanati Mirandhas Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Can you call Hari Guru Prabhu for 2 minutes? Hare Krishna. तो आप सबका स्वागत है. आखिरी दिवस है, फिर आप सबकी मुक्ति होने वाली है बहुत जल्दी. मतलब इस जगत से नहीं, इस कोर्स से. हरे कृष्णा. तो जैसे हम कह रहे थे कि बस आखिरी दिन है, फिर इस कोर्स से, ये रोज रोज के हमारी बातों से बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिलने वाली. बस एक डेढ़ घंटे की बात और है. तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ दिनों से कि किस तरह भगवान का विषय, भगवद गीता के आधार पर आत्मा का विषय, कर्मों का विषय कल हम लोगों ने चर्चा किया. तो अब ये जानने के बाद कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मेरा संबंध भगवान से है, और इस जगत में अलग अलग शरीर कर्म के अनुसार मैं धारण करता रहता हूँ, और अगर इस जन्म चक्र या इस संसार चक्र को मुझे बंद करना है तो क्या करना चाहिए. तो अब जो भी भगवान ने भगवद गीता में बताया उसको सार के रूप में आपको हम देंगे आज. व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब जिसको आप पालन कर सकते हैं. तो उन चीजों को बड़े सरल शब्दों में, वही चीजें जो भगवान ने भगवद गीता में कही उनको बड़े सरल शब्दों में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप उसको अपने जीवन में उतार सकें. क्योंकि यहाँ इतने दिवस आने का लाभ आपको तब होगा. हाँ, सुना आपने, ये तो लाभ है ही, लेकिन सच्चा लाभ तब होगा जब आप इसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे. अन्यथा आपके 5 दिवस 6 दिवस व्यर्थ हो जाएंगे आना यहाँ पर सब सुनना. तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि भगवद गीता को कैसे व्यवहारिक ज्ञान में लिया जाए. तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ ये जान लेनी चाहिए कि भगवद गीता ये सबके लिए है. भगवत गीता कोई एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए, किसी एक उम्र के लिए नहीं है, सबके लिए है. इसको यूनिवर्सल बुक कहा गया. यूनिवर्सल मतलब जैसे नियम होते हैं जो सबके लिए होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ये यूनिवर्सल लॉ कहलाता है. चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसको लागू होता है. इसी तरह भक्ति के सिद्धांत भगवद गीता में जो दिए गए हैं वे हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं. हर एक व्यक्ति को उनको पालन करना चाहिए या हर एक व्यक्ति उनका पालन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के लोगों को पालन करना है, केवल जो भगवद गीता पढ़ते हैं उनको पालन करना है, जो कृष्ण के भक्त हैं उनको पालन करना है, नहीं, ये सब के लिए है। तो ऐसे चीज़ों को हमें जानना चाहिए। तो भगवद गीता में कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो करने योग्य हैं और कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, जिनको यम और नियम कहते हैं, करना और नहीं करना। तो ऐसे कुछ चीज़ों को, क्योंकि भगवद गीता में छठे अध्याय में जब भगवान ने मन को वश में करने की बात कही, तो उस समय अर्जुन ने भगवान से कहा कि चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये जो मन है बहुत चंचल है, बहुत दृढ़ है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। मैं अपने तीरों के बल पर बहती हुई हवा को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को नहीं। और आप कहते हैं मन को वश में करना है। तो भगवान कहते हैं, असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम, कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत कठिन है वश में करना, मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। कि अगर आप दो काम करोगे जीवन में अर्जुन, तो फिर इस चीज को वश में कर सकते हैं। और जिसने मन को वश में कर लिया, भगवान कहते हैं उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परमात्मा समाहितः, तो जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग पा लिया। तो इसीलिए मन को जीतने का क्या भगवान ने उपाय बताया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास यानी कुछ करना और वैराग्य यानी कुछ चीजों से दूर रहना, इसको वैराग्य कहते हैं। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, अब इतने दिन हमने थोड़ा बहुत जो भगवद गीता से सुना उसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, हमें भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जिनके मन मुझ में लगे हैं वे लोग सदैव मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि सदैव वे लोग साथ में आकर, जिनके मन मुझ में लगे हैं, वे मेरी कथाओं को कहते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा सबसे पहली चीज भक्तों के संग में रहना चाहिए, अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भक्तों के संग में आके क्या करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए, ताकि हमारी जो बाहर के अभी तक आसक्तियां हैं वो कट जाएं। और भक्तों के साथ में आकर आध्यात्मिक प्रवचन सुनने चाहिए, भगवान के विषय को सुनना चाहिए। भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है कि हमारी शक्ति न होते हुए भी वो हमें जीवन की सफलता तक ले जा सकते हैं। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको देते हैं। एक बार पक्षियों में दौड़ लगी, रेस बर्ड्स की। अब बर्ड्स की रेस तो भागने में नहीं होगी, उड़ने में होगी। तो कंपटीशन ये थी कि कौन सबसे ऊंचा उड़ सकेगा। तो सारे पक्षी खड़े हुए और फिर रेस शुरू हुई, और जिसकी जितनी क्षमता थी थोड़ा ऊपर उड़े, तोता कबूतर इत्यादि थककर वापस आ गए। लेकिन जो गरुड़ थे वो बहुत 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 ऊपर चले गए, और बहुत ऊपर जाकर एकदम थक गए उड़ते उड़ते। और तब उन्होंने देखा कि वो बहुत ऊपर आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जीत गया, कोई भी इतना ऊपर नहीं आ पाया। लेकिन अब मैं थक गया, अब मैं उड़ नहीं सकता, अब मैं बहुत ऊपर आ गया हूं और मैं जीत गया हूं। तो उस समय जब उन्होंने कहा तो उनके कान में एक आवाज सुनाई दी, अभी नहीं, अभी आप जीते नहीं हैं। तो उन्होंने देखा, रे इतना ऊपर कौन सा पक्षी आकर कह रहा है। तो उन्होंने देखा कि उनके जो पंख थे, गरुड़ बहुत बड़े होते हैं ना, तो उनके पंख बड़े बड़े होते हैं, उनका शरीर बड़ा होता है, तो पंखों के बीच में यहां पर एक छोटी सी चिड़िया बैठ गई थी। अब वो चिड़िया उड़ तो नहीं सकती थी उतना ऊंचा जितना गरुड़ चले गए, लेकिन वो उनके पीछे ऊपर बैठ गई थी बस। अब गरुड़ अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ रहे हैं और वो ऊपर 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 उड़ गए और चिड़िया को कोई शक्ति नहीं लगी। अभी उसकी सारी शक्ति बाकी थी। उसने कहा, अभी मैं उड़ना शुरू करती हूं। वैसे आप सबसे विनती है कि अपने मोबाइल्स बंद रखें, या स्विच ऑफ करें, या साइलेंट पे करें। तो वे लोग ऊपर ऊपर ऊपर, तो इस तरह से तो गरुड़ भक्त का सूचक है और हम लोग छोटी सी चिड़िया के समान है भक्ति में। लेकिन अगर हम गरुड़ जैसे भक्तों का संग करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो फिर बड़ी आसानी से हम भक्ति की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। हमारी क्षमता नहीं है, भक्त भक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हम बड़ी आसानी से ऊपर तक जा सकते हैं। भक्तों की शरण लेने से हम गलत प्रभावों से भी बचते हैं। इसका भी और एक उदाहरण आपको देते हैं। एक समय एक शिकारी था, तो उसको शौक था कि वो पक्षियों को पकड़कर पक्षियों को ऐसे छोड़ा करता था और गोली मारता था उनको, तो उनको मार डालता था। तो उसको शौक था उड़ते हुए पक्षियों को गोली मारना था और था और था। तो ऐसे ही एक दिन उसने थोड़े से पक्षी लिए, 3-4 पक्षी ऐसे ऊपर छोड़ा और गोली मार रहा था। तो 3-4 को गोली मारी, तब तक एक जो पक्षी था छोटा सा, बड़ा बुद्धिमान था, उसके पैर पर जाकर बैठ गया, वो उड़ा नहीं। तो जब पैर पर बैठ गया तो बाकी सबको तो गोली मारी, अब जो नीचे बैठा है उसको गोली कैसे मारेगा, गोली मारेगा तो कहाँ जाएगी गोली, उसके ही पाँव में लगेगी। तो इसलिए उसने कहा, ठीक है, ये थोड़ा स्मार्ट भक्त है, स्मार्ट पक्षी है, इसको छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ दिया। तो बाकी लोग उड़ रहे थे इसलिए मारे गए, लेकिन जो वो छोटा सा पक्षी था उसने पाँव पर बैठ गया तो बच गया। इसी तरह जब हम लोग बहुत उड़ने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में, तो माया की गोली लग जाती है। लेकिन अगर हम भक्तों की शरण ले लेते हैं तो फिर माया भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के शरण में रहें और प्रवचन सुनने चाहिए, आध्यात्मिक बातों को सुनना चाहिए, इससे हृदय शुद्ध होता है। आप जान लीजिए, आपके जीवन में जो चीजें आप देखते हैं, जो चीजें आप खाते हैं, जो चीजें आप पढ़ते हैं, जो चीजें आप सुनते हैं, ये सब आपके चरित्र पर प्रभाव करती है, आपकी मानसिकता पर, आपके विचारों पर प्रभाव करती है, स्वाभाविक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल हत्या की बातें सुन रहा है, इधर मारा उधर मारा, ये गोली वो गोली, यहां मारा वहां मारा, तो एक दिन उसका झगड़ा होगा, वो भी मार देगा, क्योंकि वो सुनता आया मारना मारना मारना, या देखता आया। कोई व्यक्ति अगर वही चीजें देखेगा तो उसके लिए मारना, जैसे अगर कोई बच्चा बचपन से एक ऐसे वातावरण में पलकर बड़ा हो रहा है जहां चोरी करना स्वाभाविक है, सभी चोर हैं, तो बड़ा होकर उसको चोरी करना कोई गलत नहीं लगेगा। वो तो सोचेगा कि मैं बड़ी चोरी करके अपने कुल का नाम रोशन कर रहा हूं, है ना। तो इसीलिए जो चीज हम लोग देखते हैं, जो चीज खाते हैं, जो चीज सुनते हैं, जो चीज पढ़ते हैं, इस पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम क्या सुने, क्या देखें, क्या पढ़ें, बहुत प्रभाव करती हैं ये चीजें। अभी देखिए समाज में, जो समाज गिरता जा रहा है नीचे की ओर, गलत चीजों का फैलाव हो रहा है, उसका एक कारण है कि वो लोग ऐसी चीजें देख रहे हैं और ऐसी चीजें सुन रहे हैं। जैसे फिल्मों में इत्यादि आप देखिए सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है कि अगर किसी का किसी के साथ गलत व्यवहार है, किसी की पत्नी का किसी के साथ संबंध है, यही जब देख देख के समाज में ऐसा हो गया है कि ये सारी चीजें होने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन चीजों को देखा है। जैसे एक बालक अगर बचपन से ये देखे एक टीवी में कि खून करना ये हीरो का काम है, तो वो भी बड़ा होकर हीरो बनना चाहेगा और खून करने में घबराएगा नहीं। तो इसलिए क्या हमें देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, ये सब बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। हमारी चेतना बहुत खराब हो जाती है, इसलिए आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनना बहुत आवश्यक है। और इस समय के लिए, कलयुग के लिए संकीर्तन आंदोलन करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान के नाम का कीर्तन करना, कैसा कीर्तन? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया, हम लोग पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा कीर्तन होना चाहिए। भगवान के नामों का उच्चारण हो, भक्त कीर्तन करें, नृत्य करें, तो ऐसा कीर्तन आवश्यक है। और ये कीर्तन किसने प्रारंभ किया? चैतन्य महाप्रभु ने। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन को शुरू किया, उनके विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस कलयुग में जो भगवान के अवतार आते हैं, उनका वर्ण काला नहीं है। तुषा कृष्णम, अकृष्णम मतलब वो गोरे हैं, गौर वर्ण है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ आए हैं। और उनकी पूजा कैसे की जाती है? यज्ञ संकीर्तन प्रायः, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उन्हें पूजता है वो बुद्धिमान है। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे संकीर्तन आंदोलन को देने। प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं छन्न कलो यद भवस्त्री गोथ स्वत्वम। वो भगवान को संबोधित करते हुए कहते कि हे भगवान, आप कलयुग में भगवान की तरह नहीं आते, एक भक्त की तरह आते हैं, इसीलिए आप त्रियुगी कहलाते हैं। त्रियुगी अर्थात जो 3 युगों में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए। अब आपको याद होगा जब हमने पहली बार दूसरे या तीसरे दिवस पर अवतारों की बात कही थी, तो हमने कहा था कि अवतारों का वर्णन शास्त्रों में होना चाहिए, किसी को भी ऐसे अवतार नहीं मान लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रों में वर्णन है। जैसे मार्कंडेय पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं गोलोकम च परित्यज्य लोकानां तृणकारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रहः। गोलोकम च परित्यज्य, मैं गोलोक जहां मैं रहता हूं वृंदावन गोलोक को त्याग कर लोकानां तृणकारणात् लोगों का उद्धार करने के लिए कलौ गौरांग रूपेण इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में लीला लावण्य विग्रह लीला करने के लिए आऊंगा। वायु पुराण में भी कहा गया है, भगवान खुद कहते हैं भक्ति योग प्रदानाय लोकस्थनुग्रहाय च संन्यास रूपमास्थाय कृष्ण चैतन्य नामद्रिक। यहां बहुत स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति योग को प्रदान करने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए सन्यास रूपम आस्थाय मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। और क्या नाम होगा मेरा? कृष्ण चैतन्य नामद्रिक, इस नाम से मैं जाना जाऊंगा। नारद पुराण में भी भगवान कहते हैं द्विज भुवि जय ध्वम भक्त रूपिणः कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुतः, कि हे देवताओं, वो कहते हैं कि आप लोग जन्म ले लो पृथ्वी पर, और कैसे? भक्तों के रूप में, क्योंकि कलौ संकीर्तन आरंभे, कलयुग में संकीर्तन आरंभ करने के लिए भविष्यामि, मैं आऊंगा शची सुतः, शची माता के पुत्र के रूप में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रदान किया। तो हम सबको संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन करने की और एक विधि है जप करना। जैसे हम लोग क्लास के अंत में पिछले 2-3 दिनों से जप कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है जप, और वो मैं हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवद गीता के अध्यायों में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप। तो आप कोई भी यज्ञ करना चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो जप करने का यज्ञ कीजिए। सबसे अच्छा यज्ञ है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता। आपको अन्य कोई यज्ञ करना हो, पंडित को बुलाइए, पता नहीं क्या क्या चीजें लाइए, फिर वो यज्ञ करेगा। बहुत सारे जप यज्ञ में कोई खर्चा नहीं, जहां बैठे हैं, जहां जिस स्थिति में है वहां बैठकर जप कर सकते हैं। तो इसलिए जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, और माला पर जप करना चाहिए। जैसे आप लोगों को इस क्लास के अंत में माला दी जाती है, आप लोग जप कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग सकती हैं। और ये जो सारी क्रियाएं हैं ये अकर्म हैं। भक्तों का संग करना, कथा सुनना, संकीर्तन करना, जप करना, ये सब ये अकर्म है। कल हमने कर्म और विकर्म के बारे में सुना था। तो अकर्म क्या है? भगवान के लिए किया गया कार्य जिसमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता, जो हमें इस जगत से नहीं बांधता, ऐसा कार्य अकर्म कहलाता है। तो माला पर हमें जप करना चाहिए, साथ ही साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। भक्ति में प्रगति के लिए सेवा बहुत आवश्यक है। सेवा से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ कारवार में, हबूवाड़ा में हम लोगों ने एक मंदिर बनाया है भगवान श्री कृष्ण का, जगन्नाथ जी वहाँ पर विराजमान हैं। तो वहाँ बहुत सारी सेवाएं आप में से बहुत लोग आकर करते हैं, और जो नहीं आते उन्हें आकर करनी चाहिए। प्रत्यक्ष सेवा जो भी हो सके। अभी पिछले रविवार को कुछ लड़के आए थे यहाँ से, वो आकर साफ सफाई कर रहे थे, वो भी सेवा है। कोई भी सेवा भगवान की हमें करनी चाहिए, इससे शुद्धता आती है, नम्रता आती है हृदय में, और आनंद प्रकट होता है। साथ ही साथ एक एकता का भाव भी आता है। तो शुद्धता, नम्रता, आनंद, एकता, और साथ ही साथ भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और ये सेवा एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी इच्छा हुई कि मैं सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूं, मैं किसी छोटे मोटे व्यक्ति की सेवा नहीं करूंगा। तो उसने देखा गांव में सबसे बड़ा कौन है? सरपंच। तो सरपंच के पास पहुंच गया कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, करने लगा। तो एक दिन देखा उसने कि मंत्री आए, और मंत्री जैसे ही आए सरपंच उठ के खड़ा हो गया। तो अरे, उसने देखा कि ये सरपंच से भी बड़ा कोई व्यक्ति है, मुझे तो पता ही नहीं था। कौन है? मंत्री है। तो उसने मंत्री से जाके कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो मंत्री ने कहा ठीक है। तो मंत्री की सेवा करने लग गए। एक दिन मंत्री की सेवा करते करते उसने देखा कि राजा आए, और मंत्री अचानक उठ के खड़ा हो गया, राजा को प्रणाम किया। तो उसने देखा अरे, इनसे भी बड़ा कोई है। तो उसने उनसे पूछा आपसे भी बड़ा कोई है? उसने कहा मुझसे बड़े राजा हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, तो राजा की सेवा करने लग गए। अब राजा की सेवा करते करते एक दिन देखा कि राजा वन में जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, रोज जाया करते। तो एक दिन वो भी चला गया देखने, तो देखा कि राजा जाके किसी साधु को प्रणाम कर रहा है। तो उसने सोचा, अरे मैंने तो सोचा था राजा सबसे बड़ा व्यक्ति है, लेकिन ये भी प्रणाम कर रहा है। तो उन्होंने जाके साधु से पूछा, राजा से पूछा कि ये आपसे भी बड़े? राजा ने कहा ये मुझसे भी बड़े हैं, ये भगवान के भक्त हैं। तो उनके पास चला गया कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो साधु ने कहा कि देखो, तुम अगर सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहते हो तो वृंदावन चले जाओ, वहां पर भगवान का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर, पूछ लेना किसी को और कृष्ण की सेवा करो, वो सबसे बड़े व्यक्ति। तो उसने कहा आपसे भी बड़े हैं? बोले हाँ मुझसे भी बड़े हैं। साधु ने सही मार्ग दिखला दिया। तो व्यक्ति चला गया, चलते चलते पहुंचा, रात हो गई। अब रात को जैसे अंदर जाने वाला था मंदिर में, दरवाजे बंद हो गए, पुजारी ने बंद कर दिए। तो उसने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, किससे मिलना है? बोले मंदिर में कृष्ण से मिलना है। तो पुजारी ने कहा कल आना, मंदिर बंद हो गया। तो बेचारा जाए कहाँ, रात को वहीं बैठ गया बाहर सीढ़ियों पर कि भगवान की सेवा करनी है। तो फिर रात के समय ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण बाहर निकले और उन्होंने देखा ये बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो क्या सेवा करोगे? आप जो कहें, ठीक है मेरे साथ चलो। तो कृष्ण के साथ चले गए, वापस भी आए, फिर वापस आकर सो गए, थक गए थे तो ठंड लग रही थी, तो कृष्ण ने अपनी शॉल उतार कर डाल दी कि ठीक है तुम ये पहन लो, और कृष्ण चले गए अंदर फिर से। सुबह जब पुजारी आए तो पुजारी तो ताला लगा के गए थे मंदिर को, लेकिन उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बाहर सो रहा है और इसके शरीर पर भगवान की शॉल पड़ी हुई है। तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पूछा तुम्हारे पास ये शॉल कहाँ से आई, तुम अंदर कैसे गए? तो उसने कहा मैं अंदर नहीं गया, जो अंदर रहते हैं वो बाहर आए थे, उन्होंने मुझे ये शॉल दी है। तो देखिए, सेवा करने की अगर इच्छा हो तो हमें सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सम्मान है ये, भगवान की सेवा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े दुर्लभ है ये, बहुत बहुत समय के बाद ये सेवा मिलती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप सेवा करना चाहते हैं किसी बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये वो, लेकिन भगवान तो उन सबसे बड़े हैं, सारे जगत में बड़े हैं, तो इसलिए उनकी सेवा ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। साथ ही साथ हमें भगवान के विग्रहों की सेवा भी सीख लेनी चाहिए। भगवान के विग्रह की सेवा अर्थात बहुत सुंदर सुंदर विग्रह मंदिरों में होते हैं, ये जानते हुए कि वो परम भगवान हैं, शास्त्र के अनुसार हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने सारे कार्य हमें उन्हें समर्पित करने चाहिए। इस दृष्टि से हमें भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, हमें प्रसाद खाना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में देखिए, हम लोग जो आपको चर्चा ये कर रहे हैं सब भगवद गीता के आधार पर है। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। वो कहते हैं कि व्यक्ति को केवल भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, नहीं तो अगर वो नहीं खाता है केवल आत्मकारणात अपने लिए खाता है तो केवल पाप खा रहा है, फिर वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। अगर भगवान को अर्पण किया नहीं है तो वो पाप है, ऐसा भगवान भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं। देखिए, हम में से कई लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान ने ऐसा कहा है, इसलिए हम लोग सब खाते हैं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की जीवन में। भगवान कह रहे केवल बिना अर्पण किया हुआ भोग या भोजन खाने से ही आप पापी हो रहे हो, बस। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, जो लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मका, आत्मकारण जो अपने लिए खाते भगवान को अर्पण नहीं करते हैं वो केवल पाप खा रहे हैं, इसीलिए हमें केवल प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद में क्या बनाना है वो भी भगवद गीता में भगवान ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि मुझे केवल पत्रम अर्थात पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, ये चीजें अगर कोई भक्ति से अर्पण करेगा तो मैं स्वीकार करता। तो बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया। उन्होंने अंडम मीटम मटनम मच्छिम कहा नहीं, इतना सब कि ये भी। एक बार हम ऐसे इस विषय में बहुत साल पहले कॉलेज में प्रवचन कर रहे थे, तो कॉलेज में हमने समझाया कि हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। तो उस समय एक लड़के ने बहुत गंभीरता से प्रश्न किया। हमने उनको इतना ही कहा था कि उसके बाद से हमने ये कहना शुरू किया अंडम मीटम मटनम, नहीं तो हम पहले नहीं कहते थे। हम कहते थे बस जो भी कहना भगवान को अर्पण करके खाइए। तो उस लड़के ने बड़ी गंभीरता से प्रश्न किया कि सर मुझे चिकन खाने में बड़ी रुचि है, भगवान को अर्पण करके खा सकता हूँ या नहीं? तो हमने कहा भगवान ने अंडम मीटम मटनम कहा नहीं है, इसीलिए उसको मत खाइए। तो ये चीज़ें आवश्यक हैं कि हमें केवल भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। ये शुद्ध करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, चेतना को शुद्ध करता है, पापों से मुक्त करता है प्रसाद। क्योंकि प्रसाद मतलब संस्कृत में प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। तो कृपा मिलती है भगवान की। तो ये शुद्ध भोजन होता है जिसमें से कर्म को निकाल दिया जाता है। हम जो भी भोजन करते हैं, ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति बनाता है उसकी चेतना उसमें आ जाती है। कर्म से मुक्त भोजन नहीं होता, क्योंकि पता नहीं कैसे कमाया गया है, किस किस को धोखा देकर वो पैसा लाया गया है, फिर उसको बनाया गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कर्म से मुक्त नहीं होता, लेकिन जो भगवान का प्रसाद है उसमें कोई कर्म नहीं होता। ऑफ कोर्स ये प्लेट तो बहुत सुंदर लग रही है, आपको ऐसा तो नीचे नहीं मिलेगा। ये केवल एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है ना, मार्केटिंग थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ता है, नहीं तो लोग खाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, ऐसा भी बन सकता है। तो हमें केवल प्रसाद लेना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण रोज भगवद गीता का पठन करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो शास्त्रों को भगवद गीता को पढ़ता है रोज, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। तो भगवान की पूजा करने की कई विधियां हैं। एक आप खड़े होकर पूजा कर सकते हो, एक आप वाचा से कर सकते हो, एक आप बुद्धि से करते हो। तो भगवद गीता पढ़ना ये बुद्धि की बात है, बुद्धि से भगवान की पूजा करना। इसीलिए रोज भगवद गीता पढ़नी चाहिए, इससे हमारी बुद्धि बड़ी तीव्र हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, हमारी समझ बढ़ जाएगी, चीजों को देखने की समझ आ जाएगी। देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत देशों में जाते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे, लोग उनसे प्रश्न करते थे, कोई फिलॉसफी के बारे में, कोई क्रिश्चियनिटी के बारे में, कोई समाज के बारे में, कोई क्राइम के बारे में, हर प्रकार के प्रश्न करते थे उनसे, और प्रभुपाद हर प्रकार का उत्तर दे देते थे। अब बताइए, उन्होंने तो ये सब नहीं पढ़ा था, तो कैसे उत्तर दे देते थे? क्योंकि भगवद गीता पढ़ते थे, भगवद गीता में सब कुछ है। तो आराम से प्रभुपाद उत्तर देते थे लोगों का। एक बार न्यूयॉर्क के पुलिस चीफ मिलने आए थे कि बहुत यहाँ पर क्राइम है, आप बताइए क्या कर सकते। तो प्रभुपाद उनको भी उत्तर दे रहे थे कि हाँ आप ऐसा ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। फिर और लोग आते थे कि ये हो रहा है समाज में, ये हो रहा है दुनिया में, ऐसा हो रहा है, या फिलॉसफी की चर्चा। प्रभुपाद बड़े आराम से उत्तर देते थे, क्योंकि भगवद गीता को पढ़ते थे। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ने से हमें इस जगत की समझ भी बढ़ जाती है। इसलिए रोज भगवद गीता का पठन करना चाहिए, और साथ ही साथ मंदिर जाना चाहिए हर रोज। कभी कभी लोग कहते हैं क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब जगह हैं, फिर मंदिर में क्यों जाना है? प्रभुपाद कहते थे कि अगर भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में नहीं है क्या? तो मंदिर में भी हैं, मंदिर में जाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने, हमने पढ़ रहे थे कि किसी ने लिखा, तो एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं 30 साल से मंदिर जा रहा हूं और मैंने 3000 श्लोक सुने हैं, 30 सालों में, लेकिन मुझे एक भी श्लोक याद नहीं, क्या फायदा मंदिर जाने का। तो उसने ऐसे लिखा, क्या फायदा मंदिर जाने, 30 साल से जा रहा हूं, 3000 श्लोक सुन चुका हूं, एक भी श्लोक तो याद नहीं है, तो जाने का क्या लाभ है। तो उसका एक बहुत सुंदर उत्तर एक व्यक्ति ने दिया। उसने कहा, मेरी 30 साल हो गए शादी होके, मैं 30 साल से विवाहित हूं, और मेरी पत्नी ने 3000 से ज्यादा मेन्यू जानते हैं आप, कि मेन्यू होता है ना, कि ये सब्जी, चपाती, दाल, राइस, ये 3000 से ज्यादा आज तक 30 साल में मुझे खिलाया होगा, मुझे एक भी मेन्यू याद नहीं है। स्वाभाविक है ना, आपको याद है कि आज से 1 साल पहले आपकी पत्नी ने आज के दिन आपको क्या खिलाया था। तो उसने, मुझे एक भी मेन्यू याद नहीं है कि क्या क्या बना था, कौन सी दाल बनी थी कौन सी, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके उस खिलाने से मैं आज जीवित हूं। अगर वो खिलाती नहीं इतना 3 साल में, तो मैं मर गया होता कब का। तो इतना मुझे पता है, बाकी मुझे मेन्यू याद नहीं, वो ठीक है। इसी तरह उसने कहा कि अगर कोई मंदिर जाता है, भले उसको श्लोक याद ना हो, 3000 श्लोक सुने, एक भी श्लोक याद नहीं, कोई बात नहीं, ये जान लीजिए कि जाने मात्र से हमारी चेतना, हम आध्यात्मिक स्तर पर जीवित रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे आध्यात्मिक स्तर पर। तो इसीलिए जाना चाहिए, मंदिर जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सही मंदिर मतलब जहां आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, कैसे भक्ति करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सेवा करनी है, जैसे यहां पर आप सबको बताया जा रहा है, ये ट्रेनिंग है, पिछले 5-6 दिनों में बताया गया, तो उसको सही मंदिर कहते हैं। मंदिर मतलब वो नहीं है कि जहां बस पुजारी लॉक मारकर घर पे बैठा रहे, कभी कोई आए तो जाकर पुजारी को उठाया जाता है। कई मंदिर ऐसे हैं, लोग आते हैं, मंदिरों में ताले लगे होते हैं, पुजारी को ढूंढना पड़ता है, फिर पुजारी उठ के आता है, आंख धोता हुआ, मुंह धोता हुआ, फिर वो ताला खोलता है, एक कुछ आरती करता है, और बस फिर बंद करके सो जाता है। कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं, भक्ति की बात नहीं, मंदिर नहीं। मंदिर वो है जहां ज्ञान मिले, आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिले। तो ये हम बतला रहे थे, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भगवान सर्वत्र हैं तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। लोग कहते हैं तो सर्वत्र तो हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं सर्वत्र। भगवान सब जगह आप देख सकते हैं। अभी हमने बताया कि भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, तो भोग अर्पण करना है तो कहां करेंगे। अगर भगवान सब जगह हैं, आप ऐसे ही खड़े हो जाओ कहीं पर भी हवा में लेके, कि भगवान आप जहां भी हैं खा लेना इसको। तो भगवान सर्वत्र है लेकिन हम देख नहीं पाते, इसीलिए हमें मंदिर जाना आवश्यक है। तो इसीलिए जो लोग घर में रहते हैं, वे अगर बहुत दूर रहते हैं मंदिर से, मंदिर रोज नहीं जा सकते, तो कम से कम घर में मंदिर बनाना चाहिए, अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहिए। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को प्रवेश करते ही भगवान का स्मरण हो। हम कई घरों में जाते हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे चित्र लगे होते हैं, घर में घुसते ही शेर का चित्र होता है, कुत्ते की फोटो लगी होती है, या तो घरों के बाहर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। ये हमारी वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता में अतिथियों का स्वागत किया जाता था। आज भी कई गांवों में ये प्रथा है कि गांवों के बाहर, घर के बाहर एक आंगन बनाया जाता है, और आंगन को ऐसे ही छोड़ा जाता है खुला, कोई भी उसमें आने जाने वाला भक्त ही नहीं, कोई भी राही वहां से निकले अगर थक गया है तो 2 मिनट बैठ जाता है वहां पर, और घर वाले अगर देखते हैं कि कोई आकर बैठा है तो उसको कुछ खाने के लिए, उसको कुछ पीने के लिए, उसको पूछते हैं रुकना है तो रुकने की व्यवस्था करते हैं। आज भी ये कई जगहों पर है। हाँ, अभी हमें सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग तो इतनी हैवी सिक्योरिटी में रहते हैं, है ना, अंदर जाना है तो पास बनाओ, कार्ड दिखाओ, ये करो, नहीं तो अलाउड नहीं है। हाँ, वो भी आजकल जरूरी है क्योंकि शहरों में इतना वातावरण खराब हो गया है, लेकिन ये हमारा लेकिन आजकल लोग बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो कोई अतिथि आ रहा है घर पे तो कुत्ते उसका स्वागत करते हैं। तो कैसी चेतना होगी, आप सोचिए, आप घर के अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शेर को देख रहे हैं, तो वही वैसी चेतना बनेगी आपकी, है ना, कुत्ते को देख रहे हैं तो वैसी चेतना बनेगी आपकी। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा कोई कुर्सी दीजिएगा उनको प्रदान कर, है पीछे है, बैठिए कुर्सी पे, बैठिए 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 कुर्सी। तो हमारी चेतना कैसी बनेगी, दिन भर बस अंदर आते हुए बाहर जाते हुए वही देख, और वही आप दूसरी ओर सोचिए कि हम घर में प्रवेश करते हुए भगवान के चित्र देखें, घर में रहते हुए चारों तरफ भगवान के चित्र हो, जाते समय भगवान का चित्र हो, तो स्मरण क्या होगा, चेतना कैसी होगी। तो ऐसे हमें करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि घर को ही मंदिर बनाए, तो ऐसा प्रयास हमें सबको करना चाहिए। अब आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं 5 मिनट का, कि हम लोग तो भारत में रहते हैं और भारत में रहकर हम लोग अपने घर को मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जापान में रहने वाला एक परिवार, माइक लाइए थोड़ा इधर, जापान में रहने वाला एक परिवार कैसे भगवान की भक्ति कर रहा है, इसको देखिए कैसा वो जीवन करता है। ऑन करके वहां लगाइए, उधर नहीं नहीं उधर नहीं, वो बटन मत दबाओ, इस तरफ से रखिए, पकड़ के खड़े रहो ऐसे। ये जापान का परिवार है, देखिए इनका घर में उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, भगवान की फोटो है, चित्र है, सारा परिवार अब आकर भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र को गाए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये दिखाने के लिए है कि नॉर्मल परिवार में रहकर भी भक्ति की जा सकती है, ऐसा नहीं है। और जापान में लोग कर रहे हैं, भारत में नहीं कर रहे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए बच्चे ने तिलक लगाया हुआ, ये वहां पर खाना खाने का स्टाइल ऐसे है, सब लोग साथ में खाते हैं। देखिए कृष्ण का नाम ले रहे हैं वहां पर, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो देखिए प्रभुपाद की बुक्स हैं, भगवत गीता उसको वो लोग पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि भारत में हम लोग इसका पालन नहीं कर रहे, और जापान में रहने वाला परिवार कितनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है। हमारी ये सभ्यता है, ये तो भारत की देन है, लेकिन ऐसा हो गया कि भारत ने दे दिया, छोड़ दिया, बाकी लोगों ने ले लिया, और भारत के लोग ही भक्ति नहीं कर रहे। तो इसीलिए मंदिर बनाना चाहिए घर को, ऐसा वातावरण होगा तो ये मंदिर है, जैसा आपने देखा पूरा समय भगवान की चेतना में रह सकते हैं, अपने अपने कार्य करते हुए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सब होते हुए भी भगवान की चेतना में वो रह सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसा कार्य करें। साथ ही साथ जो लोग गृहस्थ हैं अर्थात जो पारिवारिक जीवन में हैं, उनके लिए दान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे लोभ से रक्षा होती है। अगर हम लोग दान नहीं देंगे तो हमारे लिए ही जीते रहेंगे। इसलिए दान देना चाहिए, लेकिन दान कहाँ देना चाहिए ये भी जानना चाहिए। अमेरिका जैसे नगरों में, राष्ट्रों में लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं और लिख कर रखते हैं एक बोर्ड लगाकर, प्लीज़ गिव मी $1 फॉर अ बियर, मुझे $1 दीजिए ताकि मैं जिससे बियर खरीद सकूं जाकर, और लोग दे भी देते हैं, हाँ जाओ पियो। ये दान नहीं है, ये तो गलत कर्म है, इससे उल्टा कर्म आ जाते हैं। उसको आपने पैसा दिया, वो जाके शराब पिएगा, गलत काम करेगा, उसका कर्म आपको आ जाएगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ था कि आप किसी पवित्र स्थान में जाते हो, तीर्थ स्थान में, अचानक आपको आकर एक व्यक्ति मिलता है और वो जेब से निकालता है कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है डॉक्टर का, दवाई का, कहता है मैं यहाँ पर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर गांव में रहता हूँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं उसके लिए दवाई लेने आया था, किसी ने मेरा पर्स मार दिया, अब मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं, दवाई के लिए नहीं है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मुझे दवाई के पैसे दे दो, बस मेरा बच्चा बच जाएगा। और आप सुन सुन के आपका हृदय द्रवित हो जाता, आँखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे अरे बेचारे का बच्चा मरने वाला, मेरा भी एक बच्चा है, इसका भी एक बच्चा है, तो चलो ठीक है, कितना चाहिए, 500 रुपया ये लो, दे देते हैं। हमने सोचते हैं आज तो दिन में एक अच्छा काम किया हमने, और फिर क्या अच्छा काम किया, वो व्यक्ति 500 रुपये ले जाकर नीचे शराब पीता है, मांस खाता है, गलत काम करता है, दो दिन बाद फिर खड़ा होता है, मेरे बच्चे के लिए दवाई खरीदनी है, तो वो सारा कर्म हमें लगता है। ये बहुत आजकल बहुत होता है, इसलिए हमें संभालना चाहिए ऐसे दान, ये दान नहीं है। अभी हमारे साथ ही हुआ, हम वृंदावन में थे, जा रहे थे, रास्ते में से किसी ने पुकारा हमें, कहा आपको मराठी आती है, तो हमने गाड़ी से हमने रोका, हाँ आती है गाड़ी, हमने रोका गाड़ी, हमने कहा मराठी आती है, बोलिए, तो मराठी में बात करने लगे। अब हम बम्बई में रहे हैं तो थोड़ा बहुत मराठी बोल लेते हैं, तो मुझे कहने लगे, उनके साथ करीब 5-7 लोग थे, 7-8 लोग, महिलाएं ये वो सब सड़क पे थे, बोलो तो वह आए देखे, बोले ये सब बैठे हैं अभी देखिए, और अच्छा था, कपड़े उपड़े अच्छे पहने हुए, सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो बोले ऐसा हो गया कि हमारा सामान पूरा चोरी हो गया और सारे पैसे उसी में थे, कुछ नहीं था, अभी ऐसी है, तो मैं महाराष्ट्र का हूँ इस स्थान का, आप मुझे अपना नंबर दीजिए और आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, बैंक अकाउंट, आप मैं पैसे भिजवा, मुझे अभी आप मदद कर दीजिए, 2,000 रुपये, बस हम लोग किसी तरह वापस पहुँच जाएँ, मैं आपको पूरा पैसा आपका वापस कर दूंगा, ये वो कहाँ मैं लेके जाऊँ, स्त्रियाँ हैं साथ में, हम लोग सड़क पर कहाँ जाएंगे। ऐसे वो प्रस्तुत कर रहा था कि अगर हमने पहले कभी नहीं सुना होता तो हमारा तो हृदय द्रवित हो ना, कि अरे सही बात है, बेचारा कहाँ जाएगा अभी। तो हमने कहा उसको कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप मंदिर में आइए, हम तो इतना सब तो लेके नहीं चलते हैं, आप मंदिर आइए, हम मंदिर जा रहे हैं, आप साथ साथ में चलिए, तो आपको हम वहाँ पर कुछ मदद कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चलिए, आपके पीछे पीछे हम आते हैं। हमने कहा आपको मंदिर पता है, बोले हाँ पता है, आप इस्कॉन कहने में, हाँ इस्कॉन, ठीक है। हम चले गए, हम गेट पर खड़े रह के बहुत देर इंतजार कर रहे थे, आया ही नहीं बहुत देर हो गई, वो आया ही नहीं आती, क्योंकि वो उसको पता था वहाँ जो मिलेगा ठीक है, बाकी मंदिर जाएंगे तो लोकल लोग पहचानते होंगे सब उसको, तो आए ही नहीं। तो देखिए ऐसी चीज, ये दान दान नहीं है, दान ऐसी जगह होना चाहिए जिसका सही उपयोग हो भगवान की सेवा में, तब उसको दान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ दिवसों पर उपवास करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, दिन भर खाते नहीं रहना चाहिए, महीने भर थोड़े दिवसों पर उपवास होना चाहिए। जैसे अभी शिवरात्रि का दिन था, कई भक्तों ने उपवास किए, तो हमें विशेष करके महीने में 2 बार एकादशी पर उपवास कर लेना चाहिए, एकादशी भगवान को प्रिय है तो एकादशी पर उपवास कर लेना चाहिए, या फिर जब भगवान के दिवस होते हैं जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि, उन पर भी उपवास करना चाहिए, तो उपवास करना भी बहुत ज़रूरी है। अब व्यक्तिगत आदतें हमारी कैसी होनी चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिगत आदतों में सबसे पहला है सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। हमें सूर्यवंशी नहीं होना चाहिए। सूर्यवंशी जानते हैं, असली सूर्यवंशी नहीं, आजकल के सूर्यवंशी जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं उन्हें सूर्यवंशी कहते हैं आज के दिन में, आज की भाषा में। तो हमें वो नहीं बनना। सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह का समय भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय में हमें भक्ति करनी चाहिए। बहुत देर तक सोने से व्यक्ति डल बन जाता है, बुद्धि उसकी काम नहीं करेगी आगे चलकर, क्योंकि बुद्धि पर आवरण हो जाता है। सुबह सुबह उठने से बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा भी लेना चाहिए। आप लोग सोचोगे ये क्यों बता रहे हैं हमें, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो नहाते नहीं हैं। यहाँ ऑफकोर्स हो सकता है आप लोगों में से कोई ऐसे ना हो, लेकिन बहुत से लोग हैं। हम कई बार कॉलेजों में प्रचार के लिए जाते थे पहले, तो एक बार एक हॉस्टल के लड़के से बात कर रहे थे, तो हमने उससे पूछा कि कितने बजे जाते हो कॉलेज, मतलब वो कह रहा था आपसे मिलना है। तो हमने कहा कल आ जाओ सुबह। तो उसने कहा सुबह तो समय नहीं होगा, कॉलेज जाना होता है। तो हमने पूछा कितने बजे जाते हो, तो उसने कहा 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है। तो हमने कहा 8 बजे शुरू होती है मतलब तुम 6:30 बजे उठते होगे, क्योंकि हमने सोचा 6:30 उठेगा, 7:15 तक तैयार होगा, कुछ ब्रेकफास्ट खाएगा, 5 मिनट लगेगा कॉलेज पहुंचने को, तो कितने बजे उठ। बोले नहीं 7:45 बजे उठता हूँ मैं। हमें विश्वास नहीं हुआ, सच बता रहे। हमने सोचा शायद उसने गलत बोल दिया। हमने कितने बजे उठते हो, बोले 7:45 बजे उठता हूँ। मैंने बोला आपने अभी कहा कि 8 बजे कॉलेज होता है, बोले हाँ 7:45 उठता हूँ, तो 8 बजे कॉलेज में पहुंच, बोले हाँ क्लास में रहता हूँ, कभी मिस नहीं करता। बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग हैं और कॉलेजों में बड़ा कॉमन है। इसीलिए देखिए परफ्यूम का बिजनेस बहुत चलता है ना। आप सोच लो जहां सबसे अच्छे परफ्यूम मिलते हैं मतलब सबसे गंदे लोग वहीं रहते हैं, नहाते नहीं है, बस उठे बाहर निकले तो आह क्या सुगंध आ रही है। सुगंध क्या नहाया नहीं गंदा। तो नहाना चाहिए सुबह, क्योंकि इससे बाहरी शुद्धिकरण होता है। हमें दो तरह के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। जैसे कल हमने बताया था ना आपको, कौन व्यक्ति सोता रहता था जो तमोगुण में है, कुंभकर्ण। तो जब हम सोते हैं तो तमोगुण का प्रभाव होता है, इसीलिए उठते ही नहाना चाहिए ताकि वो प्रभाव चला जाए, और अंदर भी साफ सफाई करने के लिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और इसको भगवद गीता में भगवान ने कहा है। आप सोचेंगे ये खाने का, इसका, ये कहाँ सब भगवद गीता में कहा है। सोने का भी विषय भगवद्गीता में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नाव बोधस्य। भगवान कहते हैं सोना भी चाहिए तो नियम से, खाना चाहिए तो नियम से, सब कुछ नियमित होना चाहिए। नियमित जीवन मन को वश में रखने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए जितने भी योगी होते हैं जो अपने मन को वश में रखते हैं वो नियमित जीवन जीते हैं। सही समय पर उठते हैं, सही समय पर सोते हैं, सही समय पर खाते हैं, सब कुछ समय पर करते हैं नियम से, तो शरीर अच्छा रहता है। और हमें एक बहुत सादा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सादे जीवन के लिए 4 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 4 कार्य जो धर्म के सिद्धांतों को तोड़ते हैं वो हैं मांसाहार, नशा करना, अवैध संग करना और जुआ खेलना। कल हमने इसका संक्षेप में वर्णन किया था कि ये चारों चीजें धर्म के 4 सिद्धांतों को तोड़ते हैं। जैसे मांसाहार के द्वारा धर्म का एक सिद्धांत कृपा वो टूट जाता है, नशा पान के द्वारा तपस्या ये टूट जाती है, अवैध संग के साथ शुद्धता, और जुआ खेलने से सत्यता का नाश होता है। इसीलिए हमें 4 नियम पालन करने चाहिए जीवन में। मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, अवैध स्त्री संग मतलब विवाह के बाहर उसको नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो ये 4 नियम हैं। मांसाहार ये बड़ा क्रूरता है। आप कभी जाकर देखिए, जैसे हम लोग जाते हैं, कोई चले जाते हैं केंचुकी फ्राइड चिकन में या मैकडोनल्ड्स में उनको बड़ा अच्छा लगता है, खा लेते हैं, लेकिन कभी जाकर देखिए जब जानवरों को मारा जाता है हमारे स्वाद के लिए, हमारी जिह्वा को 5 मिनट का स्वाद देने के लिए, कितनी क्रूरता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे उनको टांग कर उनको काटने के लिए ले जाया जा रहा है। आप कभी गए हों, हमें विश्वास है कि आप कभी भी किसी बड़े कत्ल खाने में जाकर एक बार वहाँ का दृश्य देख लें तो जीवन में कभी मांस नहीं खाएंगे, इतनी क्रूरता से उनको मारा जाता है। गायों को उल्टा टांगा जाता है जिंदा, और उनके गले को ऐसे काट दिया जाता है, खून निकलता है और उसको खून को बकेट में भरा जाता है। फिर जब सारा खून निकल जाता है तो उनके शरीर में गर्म पानी भरा जाता है जिससे उनका मांस फूल जाए और लाल हो जाए, और फिर उनको काटा जाता है बड़ी बेरहमी से, और उसके बाद भी हम लोग उसको बड़े मजे से खाते। तो मांसाहार बड़ा क्रूर है। मनुष्य को जानवर की रक्षा करनी चाहिए एक छोटे भाई की तरह, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई की रक्षा करता है, ऐसे ही हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनको खाना चाहिए। अपने शरीर को हमें ग्रेवयार्ड नहीं बनाना चाहिए। मरा हुआ चीज शरीर में डालकर क्या बना रहे हैं उसको, कब्र खाना। तो मांस मनुष्यों के लिए नहीं है, तो इसलिए हमें मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे इसमें और भी कई चित्र थे, हमने निकाल दिए, बहुत भयानक चित्र थे मांसाहार के। दूसरा चीज, नशा पान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में प्रतिबंधित है नशा करना, क्योंकि वैसे ही हम लोग नशे में हैं और नशा करके क्या मिलने वाला है। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होना चाहिए, अर्थात केवल अपनी विवाहिता स्त्री के साथ प्रसन्न रहना चाहिए, अन्य कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, और जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को असत संग त्यागना चाहिए। असत संग मतलब ऐसा सारा संग जिससे गलत बातें हमें सीखने को मिले। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई चीज है, त्याग दीजिए उसे अगर वो असत संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकालना चाहिए हमें। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास समय है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समय निकालना चाहिए, और जितना हो सके टेलीविजन और सिनेमा को कम करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बता रहे थे जो हम देखते हैं जो हम सुनते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और टेलीविजन और सिनेमा का तो बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको बताएं कि जो 800 साल के मुगल राज्य ने नहीं किया, 800 साल मुगलों ने हम पर राज्य किया, जो 800 साल में नहीं हुआ, और जो 200 साल के अंग्रेजों के राज्य में नहीं हो पाया, वो केवल 20 साल के ZTV ने कर दिया, MTV, ZTV, जो भी TV हैं। इतना नुकसान 800 साल में मुसलमानों ने नहीं किया, 200 साल में अंग्रेजों ने नहीं किया, जितना केवल TV ने कर दिया 20-25 साल में, MTV और पता नहीं कितने सारे TV आकर। आजकल कुछ भी देख सकते हैं आप, और अब तो इंटरनेट आ गया। आप जानते हैं कुछ कई साल पहले एक सर्वे किया गया था कि एक बच्चा जब तक 10वीं कक्षा पास करता है तो वो TV पर 10,000 हत्याएं देख चुका होता है, हिंसा की कई घटनाएं देख चुका होता है, रेप्स देख चुका होता है, अवैध चीजें देख चुका होता है, उसका मन कैसा होगा? बड़ा होकर जहां उसको अवसर मिलेगा वो वही करेगा, क्योंकि उसने देखा है, वही देखकर बड़ा हुआ। तो हम लोग क्या दे रहे हैं अपनी संतानों को? एक अमेरिका में एक प्रसंग आया था कि एक स्त्री थी, वो गर्भवती थी, बच्चा पेट में था, और वो स्त्री जब गर्भवती थी तो एक विशेष सीरियल देखा करती थी, वो उनको बहुत सीरियल पसंद आता था, TV का वही देखती थी। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा बहुत रोता था, लेकिन एक ही समय चुप होता था जब वो सीरियल आता था, तो चुप हो जाता था, बाकी टाइम रोता रहता था। तो देखिए हम लोग सीरियल बेबीज अभी आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चा जन्म से ही, भागवत में वर्णन है कि जब प्रहलाद महाराज मां के गर्भ में थे तो नारद मुनि ने उन्हें भागवतम सुनाई, और आजकल हम लोग उनको TV दिखा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सावधान हमें रहना चाहिए। इस महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन है और यहाँ कारवार में रहते हुए आप लोगों को बहुत सुविधा है। जैसे हमारा मंदिर है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का हब्बूबाड़ा में, कारवार में रोज़ वहाँ कार्यक्रम होते हैं, रविवार को विशेष कार्यक्रम होता है, उत्सवों को मनाया जाता है। हर रविवार को दोपहर 12:30 से शुरू होता है कार्यक्रम, आरती होती है, प्रवचन होता है, फिर लंच होता है, प्रसाद होता है सबके लिए। तो आप लोगों के लिए बड़ा अवसर है कि आप मंदिर में आ सकते हैं। कई लोगों को ये अवसर नहीं मिलता। जैसे अभी 23 तारीख को हम लोग मंदिर में उत्सव मनाने जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का हम वर्णन कर रहे थे, उनका आविर्भाव दिवस है, उस दिन वो प्रकट हुए थे, इसको गौर पूर्णिमा कहते हैं। तो 23 तारीख को हम लोग मनाने जा रहे हैं, आप सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं, आप आइए। तो ये बड़ा अवसर है मनुष्य जीवन में, इसका लाभ उठाइए, इसको व्यर्थ मत कीजिए जीवन को, बहुत मुश्किल से हमें मिला है। तो अगर हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझकर उसमें समय बर्बाद नहीं करें, उसका लाभ उठाएं, तब तो सही दृष्टि में भगवद गीता को हम लोग जी सकते हैं, अन्यथा भगवद गीता केवल शब्द रह जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 5 दिवसों तक 6 दिवसों तक आपने बड़े शांति से बैठकर श्रवण किया, आप लोग आते रहे समय पर और सुनते रहे, इस चीज़ को बहुत अच्छा लगा हमें। और आशा करते हैं फिर आपसे भेंट होती रहेगी, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मिलेंगे, और नहीं चाहा तो फिर कह नहीं सकते, भगवान की इच्छा। लेकिन जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पर हर शुक्रवार को कार्यक्रम होता है मंदिर में, कार्यक्रम होता है या यहाँ होता है, तो हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से कार्यक्रम होता है, जिसमें कुछ प्रवचन होते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं और फिर सबके लिए प्रसाद होता है। कृपया आप सब आइए, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें और आगे भक्ति कैसे करनी है इसकी चर्चा होती है। साथ ही साथ रविवार को सुबह हम लोग सब मिलकर यहाँ मंदिर में बैठकर जप करते हैं, और 7 बजे से 7:30 बजे तक आधा घंटा आप सब भी आइए उसमें। हर रविवार तो हम नहीं आ पाते, हम किसी रविवार नहीं आए हैं अभी तक, आ नहीं पाते हैं, लेकिन इस रविवार को सुबह आएंगे, तो आप सब भी आइए, बैठकर जप करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सुविधाएं हैं इसका लाभ आप सब लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी के कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो 5 मिनट हम लोग प्रश्नोत्तर ले सकते हैं, क्योंकि आज आप लोगों को सर्टिफिकेट्स देने हैं, नोट्स देने हैं, हम लोग को जप करना है और भी काफ़ी कार्य हैं। आप में से जो लोग फीडबैक फॉर्म ले गए थे, आशा करते हैं उन्होंने वापस दे दिए होंगे, कृपया भर के दे दीजिए। तो कोई प्रश्न आपके हैं क्या है? ऑलरेडी प्रश्न आए हुए हैं, और भी कोई लिख के देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। प्रश्न है कि दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भगवान का रूप है या देवता हैं? ये भगवान के अवतार हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हुआ है। तो दत्तात्रेय ये भगवान के अवतार हैं। दूसरा प्रश्न, हनुमान जी, अश्वत्थामा और कोई एक ऋषि अमर है ऐसा कहा जाता है, ये सत्य है क्या? हाँ सत्य है, अमर नहीं है, चिरंजीवी हैं, इनको चिरंजीवी कहा जाता है। और केवल 2-3 नहीं, बहुत सारे हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा हैं, परशुराम जी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी जो बहुत लंबे समय तक जीते हैं, अमर नहीं है, अमर यानी कभी नहीं मरेंगे ऐसा नहीं, चिरंजीवी यानी बहुत लंबी उम्र, इतनी लंबी होती है कि प्रायः अमर कह दिया जाता है। तो ये सत्य है कि ये लोग चिरंजीवी हैं, हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा हैं, परशुराम जी हैं, और ऐसे कई लोगों का वर्णन हुआ। शिरडी के साईं बाबा, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ, शेगांव के श्री गजानन महाराज ये भगवान के रूप हैं या अवतार हैं, इस बारे में कुछ बताइए। हम तो बाकी सबके नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो हमें हम उनके विषय में बोल नहीं सकते। स्वामी समर्थ या गजानन महाराज समझ चाहते हैं, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारा ज्ञान बहुत कम है, इसलिए इनके विषय में हमने सुना नहीं है। तो जिसके विषय में सुना नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं कि अवतार हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने अवतारों का वर्णन करते हुए कहा था अवतार किसे मानना चाहिए, तो आप उस सूची में से देख सकते हैं। अवतार की पहली हमने योग्यता बताई थी, उनका वर्णन शास्त्रों में होना चाहिए, तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। तो हम क्योंकि जानते नहीं हैं, तो हम कैसे बताएं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अवतार किसे कहते हैं। तो अवतार उन्हें कहते हैं, पहली चीज, शास्त्रों में वर्णन हो, विश्वरूप दिखलाया हो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हो, कोई अति मानवीय कार्य किया हो, ये सब अवतारों के लक्षण हैं। तो अगर ये हैं तो आप इन्हें मान सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं, तो सरल है जानना। और जहाँ तक शिरडी के साईं बाबा की बात है, तो आपको बताएं कि हम जब स्कूल कॉलेज में थे, हर 15-20 दिन में शिरडी जाया करते थे, हर 15-20 दिन में। तो इसलिए उनके विषय में हम बोल सकते हैं, बाकियों को हम जानते नहीं तो कैसे बोलें। तो हर 15-20 दिन में जाते थे, वहाँ पर शिरडी में दर्शन के लिए जाया करते थे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ की किताबें पढ़ने लगी, वहीं से किताब लेकर जब हमने पढ़ी, तब हमें समझ में आया कि वो कितने महान पुरुष हैं, भगवान के महान भक्त हैं वो साईं बाबा। और जो मंदिर वो बनवा रहे थे, वो भी श्री कृष्ण के लिए बनवाना चाहते थे। हर रोज भगवद गीता पढ़ते थे, उस समय ज्ञानेश्वरी थी, उसको पढ़ा करते थे। तो अगर उनके उनके कार्यों को देखे, और उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा, जो धन उन्हें मिलता था वो शाम तक बांट देते थे। इवन मरते मरते उनके पास आखिरी 9 सिक्के थे, वो भी वो जो काम करने वाले थे उसको देकर चले गए। तो ये भक्त के लक्षण हैं, ये साधु, ये सिद्ध पुरुष हैं। तो इसीलिए अवतार हैं या नहीं, हमने यही बताया कि ये आपको उस श्रेणी में जाकर देखना है। हम आपको ये बता सकते हैं कि अवतार के लक्षण क्या होते हैं। अब आप हरेक का नाम पूछेंगे, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, वो आप लक्षण के अनुसार देखिए, आप निर्णय लीजिए कि वो अवतार हैं या नहीं। हाँ, लेकिन जब हमने साईं बाबा के विषय में पढ़ा, तो हमारा पर्सनल अनुभव ये था कि बहुत महान भक्त हैं भगवान के, सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने सिखलाया सबका मालिक एक है, एक ही है भगवान। और हम भी आपको यही बता रहे थे दूसरे दिन, एक ही भगवान है और वो है श्री कृष्ण। और उन्होंने ये बतलाया क्योंकि वो अपने भक्तों को कहते थे, जाकर पंढरपुर में दर्शन करके आओ विट्ठल के। उनके कई भक्त ऐसे थे, हमें नाम अभी ध्यान नहीं, उस समय हमें नाम सब ध्यान थे, कि एक भक्त थे उनके जो पंढरपुर में दर्शन करके भगवान के विट्ठल के फिर आया करते थे। एक बार बिना दर्शन किए आ गए, तो उन्होंने वापस भेजा कि नहीं, पहले जाओ दर्शन करके आओ। फिर ये जो मंदिर भी उन्होंने बनवाना शुरू किया शिरडी में, ये विट्ठल के लिए था, लेकिन आधा ही बना था, हुआ नहीं था, वे चले गए, तो फिर उनके अनुयायियों ने उनका मंदिर बना दिया। लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है उनके चरित्र में, कि वो विट्ठल का मंदिर बनाना चाहते थे। तो इस दृष्टि से साईं बाबा एक सिद्ध पुरुष हैं, भगवान के महान भक्त हैं, और अवतार हैं या नहीं, ये तो आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं। जगत दुखों से भरा हुआ है, हम भगवान के अंश हैं, जगत को भगवान ने बनाया, दुखों से इस भरे जगत को बनाने की क्या आवश्यकता थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान दुख को इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें याद दिला रहे हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं और हमें भगवान के धाम में रहना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस जगत के परे एक शाश्वत जगत है जहां कोई दुख नहीं है। असली सुख वो है, आपका असली घर वो है, आप उस घर को छोड़कर आए हुए हैं। इसीलिए भगवान कष्ट दे देकर आपको याद दिला रहे हैं कि निकलो यहां से और एकदम अच्छे जगह पर, शाश्वत जगह पर पहुंचो। जैसे मान लीजिए कि भगवान ने, आपके पिता ने आपके लिए एक बड़ा महल बनाया हुआ है और आपको पता नहीं है, आप झोपड़ी में रह रहे हैं, तो आपके पिता आपको बार बार आकर बता रहे कि देखो कष्ट है झोपड़ी में, चलो यहां से निकलो, तो ये जानने के लिए बताने के लिए इस जगत में कष्ट है। दरअसल भगवान ने कष्ट दिए नहीं हैं, ये हमारे कर्मों से आते हैं, लेकिन फिर भी जो कष्ट हैं वो केवल इसलिए हैं कि हमें मार्ग दिखलाएं कि हम भगवान के धाम जा सकें, एक ऐसे स्थान पर जा सकें जहां केवल सुख है, अपने घर वापस जा सकें। इज इट अ सिन टू किल बेड बग्स एंड मॉस्किटोस, मच्छरों को मारना पाप है या नहीं? वेल, अगर हम अवॉइड कर सकें तो अच्छा है, मच्छरों को मारने की क्या आवश्यकता है, ओडोमॉस लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, मच्छर भाग जाएंगे। तो जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए। आप देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जितना आप मच्छरों को मारते हैं उतना ज्यादा वो आपको काटते हैं। मारना बंद कर दीजिए, वो काटना बंद कर देंगे, बड़े फ्रेंडली हैं वैसे वो। तो नहीं भी है तो कुछ ऐसी चीज है, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लीजिए, उनको भगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हो सके तो ना मारिए, क्योंकि किसी भी जीव को मारने से पाप तो लगता ही है। अब वो मच्छर क्या कर रहा है, उसकी क्या गलती है? आप बोलोगे हमारा खून पी रहा है, तो उसका अधिकार है, वो है ना, भगवान ने दिया उसको अधिकार कि तुम खून पी के जियो, तो क्या गलती कर रहा है वो? तो अपना काम कर रहा है, आपको गलत लग रहा है उसमें, तो भगवान को तो गलत नहीं लगा, इसीलिए भगवान ने उसके क्या बोलते हैं जीभ की जगह उसको सिरिंज दिया है, है ना, मारता है ऐसा सिरिंज मारता है, पूरा खून निकाल लेता, कितना बढ़िया, देखिए। और सिरिंज भी भगवान का कितना बढ़िया है, वैसे मच्छर को पकड़ेंगे तो वो जरा सा ऐसे टूट जाता है, लेकिन वही जरा सी वो एकदम पतला चीज कैसे शरीर में घुस जाती है, शरीर में घुसने के लिए तो सुई जैसा चाहिए ना कड़क, कोई पतली चीज थोड़ी, आप कोई हवा, अभी आप कोई पत्ता ले लीजिए, पत्ता घुसाइए, नहीं जाएगा। लेकिन भगवान ने देखिए कैसी व्यवस्था की है, जब मच्छर को मारना होता है तो सीधा अंदर मारता है, निकाल लेता है, तो अधिकार है उसका, तो उसमें ज्यादा हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ भगा सके तो अच्छा है। जगन्नाथ जी भगवान के अवतार हैं क्या? नहीं, जगन्नाथ जी भगवान के अवतार नहीं है, ये गलत धारणा है। जगन्नाथ जी भगवान हैं। जगन्नाथ कौन है? वो कृष्ण है, कृष्ण बलराम और सुभद्रा। तो कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, इसलिए जगन्नाथ जी कोई अवतार नहीं है, वो तो स्वयं कृष्ण है। हम लोग 108 बार महामंत्र क्यों जपते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें 108 बार नहीं जपना चाहिए, हम लोग को 108 × 16 राउंड्स जपना चाहिए कम से कम। तो हम लोग 108 बार क्यों जपते हैं? क्योंकि 108 नंबर बड़ा पवित्र माना गया है शास्त्रों में। भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो उनके 108 गायों के दल थे, 108 गाय नहीं थी, 108 ग्रुप थे गायों के श्री कृष्ण के। और उपनिषदों में भी 108 उपनिषद हैं, और भगवान की गोपियों में भी प्रमुख 108 गोपियां हैं। ऐसे 108 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए हम लोग करते हैं, ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि एक उपनिषद में लिखा गया है कि आपको जीवन में इतना इतना बार भगवान का नाम ले लोगे तो निश्चित मुक्त हो जाओगे, तो इसलिए गिनने के लिए वो अच्छा रहता है। जब हम उसको 16 बार करते हैं तो जैसे हम लोग 16 माला जप करते हैं, तो उस उपनिषद के अनुसार अगर आप 16 माला जब 55 साल तक करोगे तब आप मुक्त हो सकते हो, और अगर 55 साल नहीं है आपके पास तो थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। भाग्य तथा कर्म में कौन बड़ा कौन है? यदि जो है तो उसका पुनर्जन्म से संबंध है तो व्यक्ति कैसे जान पाएगा? भाग्य तथा कर्म में बड़ा कौन है? कर्म भाग्य बनाता है तो बनाने वाला बड़ा होगा, है ना, तो कर्म भाग्य बनाता है। जब हम कर्म करते हैं हमारे कर्मों के जो फल इकट्ठे होते जाते हैं, फिर उन इकट्ठे फलों में से एक जीवन में हमें जो मिलता है वो भाग्य कहलाता है। तो हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तो एक तरह का भाग्य, बुरा कर्म करेंगे तो दूसरी तरह का भाग्य, अकर्म करेंगे तो तीसरी तरह का भाग्य। तो कर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है। और उसका पुनर्जन्म से क्या संबंध है तो ऐसे व्यक्ति कैसे जान पाएगा? पुनर्जन्म से संबंध है कर्म का, क्योंकि जैसे आप कर्म करोगे अगला जीवन वैसा ही मिलेगा। उदाहरण देते हैं आपको, अगर आपने पशु की तरह जीवन जिया है, कार्य पशु, मनुष्य शरीर मिल गया लेकिन कार्य पशु के किए हैं, तो फिर अगले जीवन में क्या होगा? पशु बनना है तो पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया जाएगा। जैसे आप लोग जब नेवी ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है ना, सीधे थोड़ी शिप पे भेज देते हैं कि आपने ज्वाइन किया और सीधे शिप पे चले गए चलाने के लिए, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरह मनुष्य जीवन से जब आप पशु जीवन में जाते तो ट्रेनिंग मिलती है, उस ट्रेनिंग सेंटर को नरक कहते हैं। तो आपको नरक में ले जाया जाता है, डंडे मार मार के आपको भौंकना सिखाया जाता है, जब तक आप अपने आप को कुत्ता नहीं मान लेते तब तक मारा जाता है। फिर उसके बाद आप मान लेते हो कि मैं कुत्ता हूं, तब आपको कुत्ते के शरीर में भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग सेंटर नरक है वहां का। तो इसीलिए कर्म से, जीवन से, पुनर्जन्म से ये संबंध है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारा अगला शरीर होगा। प्रश्न है, गीता इज द एडवाइस गिवन बाय श्री कृष्ण टू अर्जुना, बट व्हेन इट बिकम्स एज ग्रंथ हु रोट इट? वेरी गुड। गीता, इसकी रचना व्यासदेव ने की है। प्रश्न ऐसा है कि गीता भगवान ने कही है तो किसने लिखा? गीता वॉज रिटन बाय गणेश, लॉर्ड गणेश, स्पोकन बाय व्यासदेव। When Vyasadeva was about to write Mahabharata, at that time, he said, I can compose the verses, but I don't have the capacity to write. So Brahma said, call Ganesha. So Ganesha was called and Ganesha said, I will write on one condition, you should not stop. If you stop, I'll stop writing. So you go on speaking, then I'll go on writing. And Ganesha is very fast. So Vyasadeva was thinking, how can I speak in such a speed? So then Vyasadeva said, no problem. But I'll tell you one more thing, I also have a condition. And what's that condition? He said, whatever I will say, you have to understand it and then write it. So Ganesha said, no problem, because Ganesha has a lot of intelligence. So when Vyasadeva wanted to take some rest, he will put some 2-3 googlies. Googly, you understand? He will put very difficult verse suddenly. And then for some time Ganesha will think, what is the meaning of this? By that time he will compose many other verses. So it was written by Ganesha, spoken by Vyasadeva. And how can they speak what Krishna spoke? Because Vyasadeva had the power, he had given this power to Sanjay also, that Sanjay, while sitting at one place, could see what is happening. So this was written by Vyasadeva. भगवान की भक्ति करना या देवताओं की, लेकिन घर में कुल देवता या किसी प्रकार का पिंड रखते हैं क्या, ये क्या है? हाँ, कुल देवता वगैरह होते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारा असली कुल क्या है। कुल देवता किसे कहते हैं जिससे कुल प्रारंभ होता है, या गोत्र होते हैं, या कोई कुल को संभालते हैं, कुल की रक्षा करते हैं। तो हमें जानना चाहिए हमारा असली कुल क्या है। अगर हम पीछे 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 जाएंगे, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे पीछे जाएंगे तो अंत में कहां पहुंचेंगे? कृष्ण के पास। तो कृष्ण कुल के हैं हम लोग सब, हमारे कुल देवता कृष्ण है, क्या चिंता है। लेकिन फिर भी ये जो कुल देवता भी होते हैं, देवताओं की श्रेणियों में आते हैं। तो जैसे हमने वर्णन किया था कि भगवान की भक्ति और देवताओं की भक्ति में अंतर होता है, ये चर्चा हम लोग दूसरे तीसरे दिन कर चुके हैं। इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग, व्हाट शुड वी डू? अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको अधिकार है तो उसे रोकना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी के मित्र हैं और मित्र के रूप में आपको अधिकार है कि आप उसकी गलत बातों को रोक सकें, तो आपको रोकना चाहिए। या आप उसके अधिकारी हैं, अधिकारी के रूप में रोक सकें तो रोकना चाहिए। लेकिन अगर आपको अधिकार नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो जो कर सकते हैं उनको सूचना देनी चाहिए। लेकिन गलत चीज़ों को सहन नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ों की अनुमति देना, गलत चीज़ों को सहन करना भी गलत व्यक्ति का साथ देने के समान है। तो अन्याय करना ये गलत है, अन्याय का साथ देना भी गलत है। तो अगर कोई गलत चीज हो रही है, आपको अधिकार है तो आप रोकिए, नहीं है तो जिसको अधिकार है उसको बताइए जाके, ताकि ये चीज रुक सके। Why did Lord Krishna had 16,000 gopikas? What is your problem? I mean, I don't understand. लोग ये प्रश्न पूछते हैं, तो आपको क्या चिंता? आपके नहीं है क्या? इसीलिए चिंता है, यही चिंता है। हमारे पास क्यों नहीं, उनके पास क्यों है? Anyway, Krishna had 16,108 wives. He married 16,108 wives. He didn't marry out of lust, that he was a lusty person. Wherever he was going, he was marrying. When he delivered 16,100 queens, princes, which were captured, 16,100 राजकुमारियों को पकड़ कर रखा था एक राजा ने, भगवान ने उसकी हत्या की और उनको छुड़ा दिया और उनको कहा आप सब अपने अपने घर जाइए, गो बैक, जहां जहां जाना है। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसके द्वारा हरण कर ली गई हैं, अब हमें कौन शादी करेगा हमसे? 16,100 थी। भगवान ने उनसे कहा आप जाइए जहां जाना, जैसे भी आप मुक्त हैं। तो उन्होंने कहा हमसे कौन शादी करेगा अभी, इसने इतने समय पकड़ कर रखा है, अब हम वापस जाएंगी तो हमारी क्या लाज रहेगी, अब आप ही हमसे शादी कीजिए। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तो उनकी रक्षा के लिए कृष्ण ने सबसे शादी कर ली 16। लेकिन आप जानते हैं कृष्ण ने कैसे शादी की थी? 16,100 शादियां एक ही समय पर, एक ही टाइम पर, एक ही मुहूर्त पर, अलग अलग जगह पर हुई थी एक ही समय। श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार कर लिया 16,108 में, 100 में एक साथ हो रही थी शादियां। तो ये देखिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यक्ति तो एक पत्नी नहीं रख सकता आजकल, 16,000 तो छोड़ दीजिए। रावण ने प्रयास किया था कंपटीशन करने का, भगवान का रिकॉर्ड तोड़ने का, 10,000 तक पहुंचा था, उसके आगे जा नहीं पाया रावण। तो इसलिए कंपटीशन करने की मत सोचिए। और दूसरी चीज, हमें पहले भगवान के विषय में जानना चाहिए। हम भगवान को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, नैतिकता और अनैतिकता ये हमारी दृष्टि से हम देख रहे हैं। जैसे एक जेल में व्यक्ति होता है तो जेल में कभी कभी भारत के प्रधानमंत्री जाते देखने के लिए, तो क्या जेल के कानून उन पर लागू होते हैं? जैसे जेल में कानून होता है कि जो भी व्यक्ति जेल के अंदर रहता है उसको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये खाना है, यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री जेल में जाता है निरीक्षण के लिए, क्या उसके ऊपर रूल लागू है? जेल के नियम उसके ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि वो उनसे परे है। हाँ, कभी कभी वो किसी स्थान पे जाते हैं, जैसे एक उदाहरण है कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो एक पागलखाने को देखने गए, बहुत बड़ा पागलखाना था, तो निरीक्षण कर रहे थे वो। तो एक पागल उनके पास आया और उनसे पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो जोर जोर से हंसने लगा पागल। तो उसने बोला क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? बोले मैं भी जब पहली बार आया था तो यही बोलता था यहाँ पर, आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो इसी तरह भगवान जब इस जगत में आते हैं तो इस जगत के नियम उन पर लागू नहीं है। और दूसरी तरफ हमें ये सोचना चाहिए कि जिन गोपियों की बात हम कर रहे हैं, जिन पत्नियों की बात कर रहे हैं, वो हैं कौन? भगवान की शक्ति है। इसको बड़े विस्तार से कभी समझना चाहिए। तो भगवान अगर अपनी शक्तियों के साथ आनंद लेते हैं क्योंकि वो शक्तिमान है, तो उसमें कोई कष्ट नहीं है। कई बार आत्मा भगवद गीता सुनने के बाद शरीर छोड़ती है तो व्यक्ति मुक्त होता है क्या? निश्चित। भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। कलेवरम यानी ये शरीर, ये छोड़ते समय अगर कोई मेरा स्मरण करता है, हाँ भगवद गीता पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है भगवान कृष्ण का स्मरण होगा, तो अगर कोई मेरा स्मरण करता है तो निश्चित वो मेरे पास आता है। तो भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय जिस जिस चीज को सोचकर हम अपना शरीर छोड़ते हैं उसी तरह के भाव को प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई भगवद गीता सुनकर छोड़ रहा है निश्चित भगवान के धाम जाएगा। जपमाला में 108 मणि क्यों है, ये उत्तर हम दे चुके हैं। संसार में कलह निर्माण हो तो उसे छोड़कर संन्यास लेना क्या सही है? बिल्कुल नहीं। संसार से भागने के लिए संन्यास नहीं लेना चाहिए, संन्यास उसलिए नहीं बना है। संन्यास ये बहुत ऊंची चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सन्यास व्यक्ति को केवल भगवान की सेवा के लिए लेना चाहिए। कष्टों से दूर जाने के लिए अगर सन्यास लेना होता तो लाइन लग जाती सन्यासियों की, क्योंकि वो सही सन्यास नहीं है। जैसे ही कष्ट खत्म होंगे आप फिर से भाग जाओगे वापस। तो कलह तो है, उससे लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप, जैसे सन्यास भी एक लड़ाई है, कई बार लोग कहते हैं कि सन्यास ले लेना, ब्रह्मचारी बन जाना, ये तो अपने अपने कर्तव्यों से भागना है, एस्केपिज्म, आप लोग समाज में संघर्ष नहीं करना चाहते। नहीं, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि सब लोग एक तरफ जा रहे हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी दूसरी तरफ जा रहे हैं। नदी का बहाव इस तरफ है, उल्टा बहना कितना कठिन है। तो इसीलिए सब लोग भोग में लगे हैं, सब मरने जा रहे हैं, और सन्यासी सोच रहे चलो उनको बचा लें। तो सन्यास का उद्देश्य है भगवान की भक्ति का प्रचार। अगर उस उद्देश्य के लिए कोई लेता है तो ठीक है, कलह के लिए सन्यास कभी नहीं लेना चाहिए, उसका सन्यास पूर्ण नहीं होगा। Why Lord Buddha did not discuss about Gita? Why has written Tripitak Shastra? Why he did not discuss about Gita? वैसे भगवान बुद्ध, okay, I'll speak, somebody has asked in English. Should I answer in Hindi or English? English. Hindi, English. Okay, the question is, why did Lord Buddha, he did not discuss about Gita? Because Lord Buddha appeared for a special purpose. Bhagwan Buddha ka avatar ek vishesh uddesh ke liye hua tha. Ye wo samay tha jab log vedon ka, shastron ka galat upyog kar rahe the. This was the time when people were misusing the Vedic literature. And so he came and he told people, give up Vedic literature. In sab ko tyag do. और मेरी बात सुनो। एक दृष्टि से वही कह रहे थे, जैसे भगवान अगर आके कहें शास्त्र मत पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, तो एक ही बात है ना, शास्त्र भी उनकी वाणी है। सो ही सेड गिव अप। सो बिकॉज ही केम हियर टू प्रीच नॉन वायलेंस, अहिंसा, परमो धर्म, एंड दैट इज द रीजन। एंड पीपल वेयर परफॉर्मिंग वायलेंस, हिंसा कर रहे थे शास्त्रों के नाम पर, जानवरों को काट रहे थे इत्यादि। तो इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ने के लिए कहा, एंड दैट इज द रीजन ही डिड नॉट डिस्कस गीता। एंड व्हाई ओनली बुद्धा? ना भगवान नरसिंह देव ने कौन सी गीता पर चर्चा की बताइए? सुना आपने कि नरसिंह देव ने गीता पर चर्चा की हो, या कोई भी अन्य अवतार? तो हर एक अवतार अलग अलग समय पर अलग अलग ज्ञान देते हैं। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने भी समय के अनुसार ज्ञान को दिया। आध्यात्मिक जगत में बुरे कार्य करने वालों को इस जगत में भेजा जाता है, या इस जगत में अच्छे कार्य करने वालों को आध्यात्मिक जगत भेजा जाता है क्या? ये दोनों ही सत्य हैं, या दोनों सत्य हैं? आप कहां पर जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में? ये सत्य है, अच्छे कार्य नहीं। इस जगत में जो भक्ति करता है, तैयार हो जाता है भगवान के धाम जाने के लिए, उसको वहां भेज दिया जाता है। और वहां पर जो लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ा आनंद लेना है, तो उनको फिर यहाँ भेजा जाता है कि जाओ जरा देख कर आओ, भगवान के बिना आनंद नहीं लिया जाता। फिर यहाँ आते हैं, बड़ा कष्ट होता है, बोलते भगवान वापस जाना है, वापस जाना है, बहुत कष्ट हो गया। फिर भगवान वापस बुला लेते कि अब समझ में आ गया, बोले हाँ समझ में आ गया। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है, आप में से कई लोग कभी जेल नहीं गए होंगे, या हो सकता है कोई महानुभव यहाँ बैठे हों, ऐसे हमें नहीं पता, लेकिन तो आप लोगों को लगता होगा कि जेल में कितना आनंद है, कुछ काम नहीं करना पड़ता, ड्यूटी नहीं है, बस जाओ घंटी बजती है आके खाओ सो जाओ। तो आप सोचो चलो थोड़ा जेल में जाके आते हैं, तो फिर कोई व्यक्ति ठीक है जाओ जेल में भेज दे, और जेल में जाके आपको पता चले बाप रे इतना कष्ट है, पता नहीं था, बाहर निकालो, तो फिर बोले पता चल गया, हाँ चलो आ जाओ। तो इसी तरह इस जगत में आते हैं, जब पता चल जाता है तो वापस चले जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, संक्षेप में बताइए। आप शायद कल यहाँ पे चर्चा में नहीं थे। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत बुरा किया होगा किसी के साथ। जैसे उदाहरण देते हैं, कभी कभी किसी के घर में एक लड़का पैदा होता है जीवन भर बीमार रहता है, जीवन भर वो व्यक्ति खर्चा करता रहता है उसके ऊपर, और फिर भी वो ठीक नहीं होता। दरअसल ये लड़के से इसके पिता ने पिछले जन्म में कर्ज लिया था, वापस नहीं दिया, इसीलिए वो पुत्र के रूप में पैदा हुआ और दे धनाधन खर्चा कराया जा रहा है, करते रहो सारा कर्जा निकाल लेता है। तो ऐसे पूर्व जन्म के कारण अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्योंकि वो आज अच्छे हैं। हमने उदाहरण दिया था पिक्चर का, आधी पिक्चर देखने का, किसी को याद है क्या उदाहरण था? कल ही दिया था ना, क्या उदाहरण था कोई बताए? यस, हाँ, बच्चों से प्यार कर रहे, चॉकलेट खिला रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बोलो, पुलिस उठा के ले जाती, कितना गलत, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो गया। लेकिन क्यों बुरा हुआ आप बताओ? पहले चोरी की थी, हमने आधी पिक्चर देखी, आधी पिक्चर देखी नहीं, तो हम उसका जीवन अभी का देख रहे हैं, पीछे का जीवन देखा नहीं है, इसीलिए होता है। मनुष्य की 4 लाख योनियों के बारे में समझाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 लाख योनियों का अर्थ 4 लाख तरह के शरीर नहीं है, कि कोई चाइनीज, कोई जैपनीज, कोई इंडियन, कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन, नहीं, 4 लाख ये चेतनाओं के स्तर है। आपको बड़ा सरल बता देते हैं, यहाँ ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण से नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो 4 लाख सीढ़ियाँ हैं, और जितना जो दूर है भगवान से उतना ज़्यादा वो भौतिकता में पड़ा है। तो इवोल्यूशन मतलब धीरे 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 भगवान के पास जा रहा है। तो जो 4 लाख हैं ये योनियाँ हैं, योनियाँ अर्थात चेतनाओं का स्तर है, जो जिसकी जैसी चेतना होती है वो उस स्तर पर रहता है। तो ये शरीर नहीं है, इसका वर्णन हम अगले महीने प्रयास करेंगे, 3 दिन का कुछ एक सेमिनार करने का, जिसमें हम चेतनाओं के स्तर का वर्णन करेंगे कि मनुष्यों के क्या अलग अलग चेतनाएं होती हैं, पशुओं की, वृक्षों की क्या चेतना होती है, तो इसका वर्णन उस सेमिनार में बड़े विस्तार से होगा, अगर आप लोग आना चाहें तो। वैसे अब अगर आप लोग अगले महीने ये 3 दिन के सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, अभी निश्चित डेट नहीं हुई है, लेकिन आप चाहें तो जाते समय आप बता सकते हैं, तो आपको सूचना दे दी जाएगी फोन या मैसेज के द्वारा। अगर अच्छे कर्म बुरे कर्मों का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो फिर हम सिर्फ अच्छे कर्म ही करें, जबकि क्या जरूरत है। बहुत अच्छा, अच्छे कर्म बुरे कर्मों का रिप्लेसमेंट नहीं है ये हमने कहा, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि अकर्म रिप्लेसमेंट नहीं है। जब हम अकर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो सकते हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म को समाप्त नहीं करते, लेकिन अकर्म क्यों अकर्म करते हैं इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। अकर्म क्या है? सीधे भगवान के पास जाना। अभी भारत में मान लीजिए कोई हत्यारा है, उसने हत्या की, फिर कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस व्यक्ति को फांसी लगानी है, बस। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बच सकता है वो? फांसी लगेगी उसको। लेकिन अगर वही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को एक एप्लीकेशन देता है, मुझे माफ कर दीजिए, इसको मर्सी पिटीशन कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत में, सुप्रीम कोर्ट जज भी प्रश्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को, आपने कैसे उसको छोड़ दिया, इतना बड़ा हत्यारा था वो, ये प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, राइट? आप जानते हैं भारत में। तो आपका प्रश्न यही है कि जिस व्यक्ति, तो अब जिसने हत्या की है, क्या वो किसी अच्छे काम से बच सकता है? अभी उसने हत्या कर दी, बोला ठीक है, उनके घर वालों को मैं 5 लाख रुपए देता हूं, बस ठीक है, छोड़ दो मुझे, तो सरकार छोड़ देगी, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगी कि ठीक है 5 लाख दिया ना, छोड़ दिया। तो ये इस तरह है कि अच्छे कर्म बुरे कर्म को समाप्त नहीं करते, वो भले 5 लाख रुपया अगर वो देगा भी, तो उसका जो उसको दुआएं मिलेंगी ठीक है, लेकिन उसको दंड तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट साइन कर दे, तो छूट जाता है। इसी तरह जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, तो हमें पापों का फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जप के द्वारा अगर हम सुप्रीम प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कई जन्मों में पाप किए हैं, क्षमा कर दीजिए, और अगर वो साइन कर दें, सारे पाप समाप्त, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी के?
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी,
कहाँ से आकाशवाणी हो रही है? हाँ,
भगवत गीता हर दिन कितना श्लोक पढ़ना चाहिए और उसका पढ़ने का कुछ विधान है क्या?
हाँ, एक चीज है कि भगवत गीता को प्रयास करें जब आप शुद्ध हों, फ्रेश हों, तब पढ़ें। कई लोगों को आदत होती है मैगजीन टॉयलेट में पढ़ने की, तो भगवत गीता को वैसे तो नहीं पढ़ सकते। शुद्ध अवस्था में अगर नहा धोकर फ्रेश माइंड से पढ़ें तो दिमाग में अंदर जाएगा। भगवत गीता की पूजा करनी चाहिए, भगवान का ही रूप है। तो वैसे तो पढ़ने के खास नियम नहीं है, लेकिन एक नियम यही है कि शुद्धता से रहें, शुद्ध भाव से उसको पढ़ें, और जितना समय हो उसके अनुसार एक श्लोक, दो श्लोक, दस श्लोक, लेकिन पढ़ें जरूर। तो ऐसा कोई नियम नहीं, बस शुद्धता से पढ़ना चाहिए। तो अभी समय काफ़ी हुआ है और आज आखिरी दिन, अभी और भी थोड़े से कार्य हैं। आप लोगों के और कोई प्रश्न हो तो हाथ नीचे रखिए, ठीक है? अभी इसका एक ले लेते हैं प्रश्न, इतनी मुश्किल से उसने हाथ उठाया था, बच्चे वैसे ही हाथ नहीं उठाते हैं। यस, आखिरी प्रश्न है, इसके बाद कोई हाथ मत उठाइएगा।
गुरुजी, हमें भगवान के लिए किसी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो लोग बलि क्यों चढ़ाते
हैं? अज्ञान है, अज्ञान है, क्योंकि बलि चलाने की जो विधि दी गई है उसमें ये लिखा गया है कि आज आप जिस मांस, मांस शब्द का अर्थ होता है, दरअसल जब बलि चढ़ाई जाती है तो जिसकी बलि चढ़ाते हैं उसके कान में एक मंत्र बोला जाता है, और उस मंत्र का अर्थ ये होता है कि आज मैं आपको काट रहा हूँ, अगले जीवन में आप मुझे काट लेना। मतलब अगले जन्म में ये व्यक्ति बलि का बकरा बनता है और वो जो बकरा है वो उसको काटता है। तो ये अज्ञान है लोगों का, इसीलिए बलि चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान को बलि नहीं दी जाती है। भगवान बलि से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। किसी को मार कर किसी का खून चढ़ाना, ये भगवान को पसंद नहीं। तो इसलिए अज्ञान के कारण लोग ऐसा करते हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करना, और जो कर रहे हैं उसको मना कर देना, ठीक है? हरे कृष्णा। तो अभी आप लोगों के सर्टिफिकेट्स देने का समय आया है, और साथ साथ जब भी करना है पहले सर्टिफिकेट दे दें ताकि जो कार्य पूरा होना है वो हो जाए, और फिर आप लोग अगर समय होगा तो फिर जब भी और कीर्तन भी कर सकेंगे। तो ये सर्टिफिकेट्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पूरा कोर्स अटेंड किया है, या कम से कम 5 दिन अटेंड किए हैं, या कम से कम 4 दिन वाले भी हैं, 4 दिन अटेंड किए हैं, उससे भी कम के हैं कि नहीं? अच्छा, कम से कम 4 दिन अटेंड किए हैं उन लोगों, यू कैन ब्रिंग इट हियर। और साथ साथ नोट्स भी हैं, तो एक माइक दो, उनके नाम अनाउंस करते रहेंगे और वो लोग आकर यहाँ पर सर्टिफिकेट्स ले लें अपने। जैसे जैसे आपके नाम अनाउंस किए जाएं, जल्दी जल्दी आकर आप सर्टिफिकेट और नोट्स ले सकते हैं। यू कैन यहाँ रख दो नोट्स, यहाँ रख दो आप सर्टिफिकेट।
हाँ,
आप नाम बोलते जाइए।
बालकृष्ण प्रभु,
अजय कुमार जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस पे समय, इस पे साइन नहीं हुए हैं, आप बाद में हमसे साइन ले लीजिएगा, एक साइन बाकी है इस पे। यस, बालकृष्ण कौन है? बालकृष्ण, यस। हरे कृष्ण। आप लोग कंजूस बहुत हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं। हरे
कृष्ण।
धीरे 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 धीरे, गलत चला जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ, बीच बीच में बनाते बजाते रहिए, पहले आंसर थोड़ा सा। ब्रज किशोर, क्या नाम है? चंदू।
दिनेश जी,
दिनेश मोहदिकर दिलीप कुमार साहू
गोपाल कृष्ण देव
हरे
अरविंद सिंह
अच्छा आप लोगों को भूख ज्यादा लगेगी बजाते रहिए
हरि किशोर
हरदन सिंह हरि किशोर आप सबके नाम भी इतने अच्छे अच्छे हैं हरि किशोर
प्रभु
पहले से पंडित हो करमवीर कर्म योग की आवश्यकता नहीं है आपको सत्यवान ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं सत्यवान है। अगर आप लोग इन्हें कभी झूठ बोलते हुए देखे तो बताइएगा संदीप सत्यवीर शिव मोहन ये कहाँ आ गए उनका नाम है अरे नाम नहीं आया बीच में बोले अरे सूर्यांश आ गया है एक मिनट शिव मोहन जी सूर्यांश आप बीच में आ गए अरे
सुजीत कुमार सिंह सुजीत कुमार प्रभु।
हरे कृष्ण।
विवेक जी भंडारकर प्रभु।
हरे कृष्ण।
विनीत प्रभु।
विनीत मतलब नम्र रहना, हमेशा नम्र रहना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को नहीं मिला सर्टिफिकेट? ऐसे कोई लोग हैं यहाँ जिनको नहीं मिला? हमें भी दिया नहीं इन्होंने, हमने भी तो किया था ना। हमारा सर्टिफिकेट नहीं दिया इन्होंने। तो कोई ऐसे अगर रह गए हो जिन्होंने 4-5 दिन अटेंड किया हो लेकिन गलती से उनका नाम नहीं आया हो, तो आप लोग बोल सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। हो सकता है कभी कभी गलती हो गई हो। तो और कुछ था अनाउंसमेंट्स या किन? डू अनाउंसमेंट कर दो, फिर उसके बाद कीर्तन करें।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े कीमती समय निकाल के आ रहे हैं यहाँ पे। 6 दिन का कार्यक्रम बहुत उत्साह से सुन रहे थे कथा को और कीर्तन भी कर रहे थे और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे होता रहता है, हर फ्राइडे होता है, 7 o'clock स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रोग्राम।
हरे गुरु प्रभु। थोड़ा साइलेंस रखना, अनाउंसमेंट हो रहा है, ध्यान।
तो सबको अनुमति है, सबको प्रार्थना है कि सब लोग आइए, उसमें भी भाग लीजिए। और संडे मंदिर में 7 बजे जपा क्लब होता है, वहाँ पर हम जपा करते हैं भगवान के नाम को।
कौन से मंदिर में?
यहाँ नीचे से मंदिर में। और इस संडे श्रीमान अब्दुल विष्णु प्रभु जी आ रहे हैं, तो सबको प्रार्थना है सब लोग आइए। और हमारा इस्कॉन कारवार में इस्कॉन टेम्पल है आपूवाड़ा के क्षेत्र में, वहाँ पे हर संडे दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक हमारा कीर्तन प्रवचन प्रसारण रहता है। तो सबको आमंत्रित है। सब
हिंदी में 2:30 बजे कहते, 2:30 नहीं कहते, 2:30 बजे थे, 2:30 बजे
चला जाते हैं। हर मंडे ऐसे ही कार्यक्रम रहता है इवनिंग 7 o'clock को, जो महाभारत कथा है, तो उसमें भी सबको आमंत्रित है। और बहुत सारे प्रोग्राम होता रहता है इस्कॉन में। और तो आप आपके नंबर दिए हैं, तो उसमें SMS जाता रहेगा कि क्या क्या कार्यक्रम है, उसके हिसाब से आप समय निकल के कृपया आइए। और ये जो मार्च महीने का 23 तारीख है, इसमें गौर पूर्णिमा आने वाला है, जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, उसमें श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी प्रवचन में बताएंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु का लीला सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबको प्रार्थना है, तो सब आ सकते हैं उसमें। तो उसमें फेस्टिवल के शेड्यूल कुछ इस तरह है कि 6 बजे शाम को कीर्तन होगा, 6:30 बजे अभिषेकम होगा भगवान का, और 7:15 को प्रवचन होगा, फिर प्रसादम होगा 8:30 को। तो हमने 6 दिन का भागवत की भगवत गीता क्लास जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हमने सुने, तो इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करने के लिए, जैसे आज हमने सुने 6 दिन सुने, तो इसको हम कल जाके भूल जाएंगे। तो जो प्रोग्राम्स होता है, जपा करते रहेंगे, डिवोटी के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो ये चार्ज करेगा हमें कैसे जिंदगी में हम इसको एप्लीकेशन करते हैं। तो प्रार्थना है सबको इसको कारोबार में अपने प्रोग्राम में आइए। आज का प्रसादम का स्पॉन्सरशिप किए हैं नावान पुलिस ग्रुप, नावान कारोबार की तरफ से। हम प्रार्थना करेंगे इनसे कि कोई आए उनके लिए भेज है छोटा सा इसको कारोबार की तरफ से, तो उसको ग्रहण करें। हम प्रार्थना करके सभी
अरे ये नेवल पुलिस वाले इतने कमजोर कैसे हो गए, नेवल ये सिक्योरिटी कैसे करेंगे।
अगले महीने 3 दिन का सेमिनार होने जा रहे हैं चेतना, जिसका नाम रहेगा चेतना। तो हम प्रार्थना करते हैं जो भी इंटरेस्टेड है या फिर अपने दोस्त के साथ आ सकते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए टेबल में रजिस्ट्रेशन। हरे कृष्ण।
वैसे आपको बताएं दिनेश प्रभु भी ये जब यहाँ पर आए थे आप ही की तरह, वो एक यहाँ पर नेवी में ज्वाइन करने आए थे, इधर उधर घूम रहे थे। कहाँ रुके थे एक दिन? यहाँ पे कहीं पे रुके थे, किसके? हाँ, उनके घर पे रुके थे और फिर कुछ पता नहीं था इनको, लेकिन फिर भगवान की योजना से पता नहीं कैसे वहाँ पर पहुँच गए मंदिर में, और तब से उनका जीवन बहुत बदल गया है और अभी खुश हैं। शायद आप ही को बताएं खुश हैं कि नहीं, आप बताइए। जब आए थे तब रो रहे थे, अभी हंस रहे हैं, तो खुश हैं। तो आप इनके ही उदाहरण से देख सकते हैं, आप ही की तरह वो भी यहाँ आए काम करने के लिए, अभी भी कर रहे हैं, काम छोड़ा नहीं है, तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, जिससे उनका जीवन बहुत बदल गया है पिछले 2 सालों में। 2 साल हो, करीब 3 साल हो गए हैं, तो यहाँ काम करते हुए भी 3 साल हो गए, और 3 सालों में उन्होंने अपने जीवन को बहुत बदला है। आप सबसे भी विनती है कि आप भी जीवन में प्रसन्न होने के लिए इस जीवन को अपनाइए। हरे कृष्णा। तो अभी कीर्तन करेंगे। जप करने की इच्छा थी लेकिन अभी समय बहुत हुआ है, और अभी जब फिर कीर्तन काफ़ी देर, तो अभी कीर्तन करेंगे। आप सब कृपया खड़े हो जाएं कीर्तन के लिए। भक्त जो करताल बजा सकते हैं वे लोग आ गए हैं, करताल बजाने वाले कोई अगर हो कहीं पे, कोई नहीं बजाने वाले? आप मृदंग बजाओ, ठीक है, आप मृदंग बजाओ तो हो जाएगा। आप सब तैयार हैं कीर्तन के लिए? बहुत धीरे बोला आपने। तैयार हैं कीर्तन के लिए? यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। जोर से हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे रामा
रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai 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 Govinda Jai Gopal 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
Hare आखिरी दो मिनट कीर्तन करेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप सब करने चाहिए। आप लोग सब जब कीर्तन होता है तो जैसे वो सब साइड में होते जाते सब दीवार का सहारा ले लेते हैं। केवल दो मिनट, लेकिन आप सब भाग लीजिए, भगवान का नाम है, अच्छी तरह से करेंगे तो लाभ होगा। ठीक है, तैयार हैं सब?
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर।
वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने उत्साह से कीर्तन करने के लिए। अभी इसी उत्साह से आप लोग प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
ये जगदीश कहाँ गया? साइन नहीं है तो मैं कर देता हूँ।